पिता द्वारा से यहाँ पर संबंधित है कान से। कान सामर्थ्य की प्रतीक और स्वाधीनता की जननी है। समस्त विकास शांत की भूमि नहीं होते हैं।
हम सभी को मिल सकती है उसकी प्राप्ति में प्रत्येक भाई और बहन सर्वदा स्वाधीन है। अतः हम सब शांत के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। आप जानते हैं जब तक मानव आवश्यक कार्य को पूरा नहीं करता और अनावश्यक कार्य का त्याग नहीं करता तब तक उसे शांत नहीं। अब विचार ये करना है कि आवश्यक कार्य क्या है। आवश्यक कार्य वही है कि जिसके करने में आपकी सामर्थ्य का और आपके निज विवेक का समर्थन है। सामर्थ्य विरोधी कार्य कोई भी कर नहीं सकता और विवेक विरोधी कार्य किसी को करना नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि सामर्थ्य और विवेक के अनुरूप जो वर्तमान कार्य है उसके करने में प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन सर्वदा स्वाधीन है और जो अनावश्यक कार्य है उसका त्याग करना है। शांति का अपहरण किसी परिस्थिति ने नहीं किया, शांति का अपहरण किया है आवश्यक कार्य के न करने ने और अनावश्यक कार्य को जमा रखने। और यदि हम शांति के महत्व को जान लेते हैं तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक शांत पा सकते हैं। किंतु सोचने की बात यह है कि हमारी प्रियता अभिरुचि शांत पाने की है अथवा नहीं। यदि है तो शांत पाने में हम सब समर्थ हैं स्वाधीन हैं। आप विचार करें जो सामर्थ्य आपको प्राप्त है चाहे वस्तु रूप से चाहे योग्यता रूप से अथवा और किसी रूप में, आजकल तो बहुसंख्या भी सामर्थ्य कहलाती है, तो उस सामर्थ्य का उपयोग आप अपने से समर्थ के प्रति नहीं कर सकते। अर्थात बल का उपयोग सबल के प्रति नहीं होता, समान बल के प्रति नहीं होता, अपित निर्बल के प्रति होता है। इससे सिद्ध हुआ कि बल का जो स्थान है वो निर्बल की सेवा में है और इसी बात को मानव समाज में फैलाने के लिए कहो या प्रचार के लिए कहो या अपनाने के लिए कहो, मानव समाज ने दो प्रकार की कल्पना की, एक राष्ट्र और एक धर्म। राष्ट्र का अर्थ क्या है? बलपूर्वक बल के दुरुपयोग को अर्थात नाजायज इस्तेमाल को रोकना। और धर्म का अर्थ क्या है? कि भाई बुराई को बुराई जानकर न करना। यदि जीवन में धर्म आ जाए तो फिर राष्ट्र की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? जब हम बुराई को बुराई जानकर नहीं करेंगे तो बल का दुरुपयोग होगा ही नहीं। जब बल का दुरुपयोग नहीं होगा तो फौज की क्या आवश्यकता होगी, पुलिस की क्या आवश्यकता होगी, न्यायपालिका की क्या आवश्यकता होगी? आप विचार करें, ये जो राष्ट्र की आवश्यकता मानव समाज को होती है उसके मूल में हेतु क्या है? केवल यही कारण है कि हम ये जानते हुए कि हमसे सबल हमारी रक्षा करे, किंतु हम निर्बल के प्रति रक्षा की भावना को नहीं रखते हैं, अपितु बल के द्वारा विजयी होकर जो पराजित होते हैं उनके प्रति न्याय और प्रेम का व्यवहार नहीं करते। इस कारण राष्ट्र की आवश्यकता होती है, किंतु जब हम वर्तमान परिस्थिति वस्तु स्थिति पर या वर्तमान परिस्थिति पर विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इस समय इस समस्या को राष्ट्र भी हल नहीं कर सका और मजहब ने भी हल नहीं कर पाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्र और मजहब हल नहीं कर सकते, हल तो कर सकते हैं, किंतु यदि आप राष्ट्र के विधान का आदर न करें, यदि आप मजहब और जीवन में एकता न करें तो बताइए समस्या कैसे हल होगी। इसलिए मानव समाज में आज इस क्रांति की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने अपने संबंध में विचार करने के का स्वभाव, अर्थात सोने से पहले और जगने के बाद इस पर विचार करें कि आज हमने कोई विवेक विरोधी कर्म तो नहीं किया, किसी विवेक विरोधी विश्वास को तो जीवन में नहीं रखा, अथवा कोई विवेक विरोधी संबंध तो नहीं है। यदि हम और आप अपने अपने जीवन में से विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दें तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक जीवन में कर्तव्य परायणता, असंगता और शरणागति आ जाए। आप जानते हैं अकर्तव्य कब आता है जीवन में, जब हम कर्तव्य से विमुख होते हैं, और कर्तव्य से विमुख कब होते हैं, जब विवेक विरोधी कर्म करते हैं, अर्थात ऐसा काम करते हैं जिसे हम दूसरों के द्वारा अपने प्रति नहीं चाहते। उसी का फल ये होता है कि जब जीवन में कर्तव्य परायणता नहीं रहती तब अपने आप अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है, और जिसके होते ही परस्पर में संघर्ष और विनाश होने लगता है। इसलिए भाई ये किसी और से कहने की बात नहीं है, अथवा ये किसी और की बात नहीं है, ये प्रत्येक भाई की अपनी बात है कि वो अपने जीवन में से विवेक विरोधी कर्म का त्याग करे। जिस समय हम भूतकाल की घटनाओं पर विचार करते हुए ये निर्णय कर लेते हैं कि अब हम विवेक विरोधी कार्य नहीं करेंगे, बस उसी समय से हमारा आपका वर्तमान सुंदर होने लगता है। की हुई भूल को न दोहराना ही भूल रहित होने का सहज, सुगम और स्वाभाविक उपाय है। इस उपाय के बिना हम वर्तमान को निर्दोष नहीं रख सकते, अथवा यूं कहो कि वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित नहीं रख सकते। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम कैसे निर्दोष हो सकते हैं, जरा विचार तो करें आप कि अगर आप भूतकाल की भूल को नहीं दोहराते हैं तो वर्तमान तो निर्दोष है ही। निर्दोषता की प्राप्ति में हम सब सर्वदा स्वाधीन हैं, किंतु कब, जब की हुई और जानी हुई भूल को न करें तब स्वाधीन है। तो अब केवल इतना प्रश्न रह गया कि जो भूल कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। आप ही बताइए इस निर्णय में क्या कठिनाई है, क्या पराधीनता है, क्या असमर्थता है। केवल एक ही कठिनाई मालूम होगी कि भूल जनित जो सुख लोलुपता है, यदि आप उसका त्याग नहीं कर सकते, अथवा आपके जीवन में भूल जनित वेदना नहीं है, तो भूल का त्याग करना संभव नहीं होगा। तो सबसे बड़ा प्रयास क्या निकला कि हमसे जो भूल हुई है उसकी व्यथा हो जीवन में, उसकी पीड़ा हो जीवन में। क्यों? ये जो सुख का प्रलोभन है ना, ये किसी अभ्यास से नाश नहीं होता। ये कब नाश होता है कि जब भूल जनित पीड़ा होती है। पीड़ा ही सुख के प्रलोभन को खा लेती है। वैसे तो आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट विदित होगा, ये मालूम होगा कि भाई आया हुआ सुख आपके न चाहते हुए भी चला ही जाता है और आपके न चाहने पर भी दुख आ ही जाता है। आप और हम आए हुए सुख को सुरक्षित रखने में स्वाधीन नहीं है। और जब तक सुख का प्रलोभन रहता है जीवन में, सुख की दासता रहती है जीवन में, तब तक दुख आता ही है। दुख को रोक नहीं सकते। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है प्रत्येक भाई और बहन के लिए कि भाई हम भूल जनित सुख लोलुपता को जीवन में नहीं रखेंगे। जैसे उदाहरण दीजिए, भूख नहीं है और किसी ने आग्रह किया और ये बता दिया कि वो वस्तु बनाई गई है जो आपको रुचिकर है, और आपने थोड़े से सुख के लिए 5 मिनट 10 मिनट बिना भूख के आप बहुत देर तक तो खा नहीं सकते और अधिक भी नहीं खा सकते, थोड़ा सा खा सकते हैं और थोड़े समय तक खा सकते हैं। तो थोड़े समय तक खाने के सुख के लिए आपने या हमने या किसी भाई बहन ने बिना भूख खा लिया, ये क्या है? भोजन करने की जो सुख लोलुपता है उससे विवश होकर खा लिया। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि आपकी जो पाचन क्रिया है, हाजमे की जो शक्ति है, वो और बिगड़ जाएगी और उसके बिगड़ने से अनेक प्रकार के जो रोग हैं वे बिना ही बुलाए आ जाए। अब यदि आपको भूल के परिणाम की बिठा है जीवन में, तो कोई कितना ही आग्रह करे आप बिना भूख कभी भोजन करेंगे ही नहीं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जितनी जीवन में सुखलोलुपता है वही हमें दुखी करती है, अर्थात सुखलोलुपता से ही हमको दुख भोगना पड़ता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि दुख भोगते हुए भी अपने पर अर्थात जीवन में दुख का प्रभाव नहीं है। यदि जीवन में दुख का प्रभाव होता तो सुखलोलुपता शेष न रहती, और जब सुखलोलुपता न रहती तो भूल युक्त जो प्रवृत्तियां हैं वे अपने आप नाश हो जाती, और जब भी नाश हो जाती तो आप जानते हैं जब हम वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए तब दो स्थितियां आएंगी सामने, अर्थात दो अवस्थाएं आएंगी। एक तो यह आएगी कि हम वो करें जो करना चाहिए, या यह आएगी कि हम कुछ न करें, न करने की स्थिति अथवा सही करने की स्थिति। की हुई भूल को न दोहराने से अपने आप जीवन में आ जाती है। इसी का नाम है कर्तव्य परायणता, इसी का नाम है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। आप जानते हैं प्राकृतिक नियम क्या है, ईश्वरी विधान क्या है, दैवी विधान क्या है, कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देते हैं तब हमारी जरूरत अपने आप पूरी हो जाती है। आज हम जो ये जीवन में देखते हैं कि हमारी आवश्यकता एकमात्र यही है कि हम अपने दायित्व को अर्थात अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में हम सभी सर्वदा स्वाधीन हैं, कभी पराधीन नहीं है। क्यों? किसी भी भाई को, किसी भी बहन को वो नहीं करना है जिसे वो नहीं कर सकता, वही करना है जिसे वो कर सकता है। तब हम और आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं। किंतु अकर्तव्य जनित जो सुखलोलुपता है उसी ने आज हमें अपने कर्तव्य पथ से च्युत किया है। अतः सोने से पहले और जगने के बाद हम इस बात का निर्णय करें कि भाई भूतकाल में जो विवेक विरोधी कर्म कर चुके वो कर चुके, किंतु अब नहीं करेंगे। आप जानते हैं न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का सबसे पहला अर्थ है अपराधी अपने अपराध से परिचित हो जाए, हमें अपनी बुराई की जानकारी हो जाए, ये न्याय का पहला अंग है। दूसरा अंग क्या है कि उस बुराई जनित प्रवृत्ति से हम दुखी हो जाएं, हम व्यथित हो जाएं कि हाय हाय हमसे ऐसी भूल क्यों हुई। जब हम अपनी की हुई बुराई दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तब जीवन में से बुराई जनित जो आसक्ति थी वो नाश होती है। और तीसरा न्याय कर्म क्या है कि भाई जो बुराई कर चुके थे वो नहीं करेंगे। तो अपने बुराई से परिचित होना, उससे व्यथित होना और उसको पुनः न करना, यही तो न्याय है। और ये न्याय जब प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन स्वयं अपने साथ करने लगेंगे तो सच मानिए उनको किसी अन्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होगी। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य यह निकला कि यदि हम विवेक विरोधी काम न करें तो हमारा समाज इतना सुंदर हो सकता है, हम इतने सुंदर हो सकते हैं कि न तो हमको रानी के पेट से राजा की जरूरत पड़े और न भाई जनता के पेट से निकले हुए मिनिस्टर की जरूरत पड़े। आज जो मानव समाज को राष्ट्र की आवश्यकता अनुभव होती है उसका एकमात्र कारण यह है कि हम की हुई भूल को दोहराते रहते हैं, अथवा यूं कहो कि विवेक विरोधी कर्म का त्याग नहीं करते हैं, अथवा यूं कहो कि कर्तव्य निष्ठ नहीं होते हैं। जैसे कोई ये कह दे कि भाई सूर्य का उदय हो गया, दूसरा कह दे कि भाई अंधकार नाश हो गया, और तीसरा कह दे कि प्रकाश की प्राप्ति हो गई, अर्थ एक ही होगा। उसी प्रकार चाहे तो आप ये कहें कि हमने की हुई भूल को न दोहराने का निर्णय कर लिया, चाहे आप यूं कहें कि हमारे जीवन में कर्तव्य प्राणता आएगी, और चाहे आप यूं कहें कि हमारा जीवन सुंदर हो गया और हमारा समाज सुंदर हो गया। तात्पर्य कहने का ये था कि जब तक हम और आप अपनी की हुई भूल से पीड़ित नहीं होंगे और उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें कितनी ही कर्तव्य की बातें बताई जाएं, और चाहे किसी मजहब की दृष्टि से बताई जाएं और चाहे किसी इज्म की दृष्टि से बताई जाएं, मजहब और इज्म का लेवल हमारे दिमाग को रहे, किंतु भाई सच बात यह है कि जीवन और धर्म में एकता नहीं होगी। तीव्र जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा जागृत होगी। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उन बातों को जाने कि जिनके जानने से हम निर्दोष हो सकते हैं। और आप जानते हैं जिज्ञासा ही तत्व ज्ञान की जननी है। जिस समय आप जानने की अभिरुचि करेंगे उस समय आप स्वयं जान लेंगे। क्यों? ज्ञान किसी व्यक्ति की उपज नहीं है, खोज है खोज, अथवा यह कहो कि उस जगदाधार की देन है। तो वो जगदाधार जब देखेगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे निर्दोष हो सकते हैं, तो आप सच मानिए निर्दोषता के समस्त उपाय आपके बुद्धि में स्वतः अभिव्यक्त होंगे, और जब बुद्धि में अभिव्यक्त होंगे तो उनका प्रभाव मन पर होगा, और जब मन पर उनका प्रभाव होगा तो उसका तब इंद्रियों पर प्रभाव होगा, और जब इंद्रियों पर प्रभाव होगा तब दोष प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन अपने को निर्दोष बनाने में सर्वदा स्वाधीन है, किंतु आज हम निर्दोषता के महत्व को भूल गए। बहुत से लोग ये कहने लगते हैं अरे भाई हम बाल बच्चेदार हैं, आज के समय में भला कहीं ब्लैक मार्केटिंग बिना किए काम चलता है? बिना सेल्स टैक्स की चोरी किए काम चलता है? बिना इनकम टैक्स की चोरी किए काम चलता है? भाई मेरे बचपन में गांव के सीधे साधे भोले भाले आदमियों के सामने जब कभी अपने साथ, तब वो ये कहने लगते भाई हम बाल बच्चे जा रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। वो आज का शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति उठता है, ये कहता है और करता है कि बिना चोरी किए बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चल सकता। ये क्या है? ये मानव जीवन की घोर निंदा है, बड़ी बेइज्जती है, ये अपनी दृष्टि में अपना बड़ा अपमान है कि आज हम बुराई का आश्रय लेकर ये विश्वास करते हैं कि हम जी सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। सत मानो भाई, इस भूल ने ही मानव समाज की दुर्दशा की है। जो मानव जगत का प्यारा हो सकता है, जो मानव प्रभु का दुलारा है, आज वो मानव किस दुर्दशा में पड़ा है, ये बात किसी भाई से किसी बहन से छिपी नहीं है। मैंने स्वभाव से कल बात करते हुए भाई से पूछा, क्या पंजाब में आज भी शुद्ध घी मिलता है जिसमें घी और दूध की नहरें बहती थी? ये लोक प्रसिद्ध बात है कि पंजाब में बहुत दूध मिलता था, बहुत घी मिलता था। उन्होंने कहा भाई संदेह रहता है, ये दशा आज हो गई, ये दशा आज हो गई। अगर आप पारिवारिक जीवन पर विचार करेंगे तो कितने माई के लाल ऐसे हैं जो ईमानदारी से पिता ये कह सके कि हमारे और पुत्र के बीच में मतभेद नहीं है, पति ये कह सके कि हमारे और पत्नी के बीच में मतभेद नहीं है, भाई ये कह सके कि हमारे और हमारे भाई के बीच में मतभेद नहीं है, पड़ोसी ये कह सके कि हमारे और पड़ोसी के बीच में मतभेद नहीं है। कितने ऐसे लोग हो, अगर होंगे भी तो भाई उंगलियों में गिनने के लायक। आप सोचिए आज हमारी पारिवारिक स्थिति कितनी बिगड़ गई, सामाजिक स्थिति कितनी बिगड़ गई, और भैया जरा और जरा गंभीरता से विचार करो, व्यक्तिगत स्थिति कितनी बिगड़ गई। आज कितने ईश्वरवादी हैं जो ईमानदारी से कह सके हमारा हृदय प्रभु प्रेम से भरा है, आज कितने अध्यात्मवादी ऐसे हैं जो सच्चाई के साथ ये कह सके कि हमें आत्मरति प्राप्त है, आज कितने भौतिकवादी ऐसे हैं ये कह सके कि हमारा जीवन वित्त प्रेम से भरपूर है। व्यक्तिगत जीवन की दुर्दशा हो गई, पारिवारिक जीवन की दुर्दशा हो गई, सामाजिक जीवन की दुर्दशा हो गई, फिर भी हमें ये घमंड कि हम मानव है और शिक्षित मानव है और बड़े सामाजिक प्राणी है। तो मेरे भाई, इस विथा को दूर करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हर एक भाई हर एक बहन अपने जीवन में से अपने जाने हुए असत्य का, अपनी जानी हुई बुराई का त्याग करने के लिए वर्तमान में तत्पर हो जाए। इस पुरुषार्थ के अपनाते ही, इस सच्चाई की अपनाते ही सत मानिए हर एक भाई का जीवन निर्दोष होगा और उसकी निर्दोषता विभू हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। आप सत मानिए एक एक व्यक्ति ने अपने को सुंदर बनाकर इतना सुंदर बनाया है कि करोड़ों व्यक्ति आज उसके पीछे चलते हैं, किंतु दुख की बात है कि करोड़ों व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति नहीं बना सके। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यही है कि हमने अपने जीवन में से अपने जाने हुए असत के त्याग का महाव्रत नहीं अपनाया। इसलिए भाई आज ये बड़ी भारी आवश्यकता है कि हर एक भाई हर एक बहन सोने से पहले अपने संबंध में विचार करें और यदि उसे अपने जीवन में अपनी की हुई कोई बुराई मालूम हो तो उसको न अपनाने का निर्णय करके सो जाए। आप जानते हैं सोते समय का जो निर्णय होता है उसका एक बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव होता है, और वो प्रभाव ये होता है कि सोते समय हम सब अपने कारण शरीर में स्थित होते हैं, तो उस समय की जो भावना है, उस समय का जो निर्णय है, उस समय का जो संकल्प और ख्याल है, वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके अहम भाव में अंकित हो जाता है, और उसके अंकित होने से सूक्ष्म शरीर पर अर्थात आपकी बुद्धि पर, आपके मन पर, आपकी इंद्रियों पर उसका प्रभाव होता है, और उसके होने से आपकी जो प्रवृत्तियां हैं वो पवित्र हो जाती हैं, अर्थात आप कर्तव्य निष्ठ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप सोकर के जगें तब आपको वो निर्णय जो कि सोते समय किया था पुनः स्मृत होगा, और उसके स्मरण होने से आप भली प्रकार अपने निर्णय के अनुसार अपना दैनिक कार्य चला सकेंगे, जिसके चलाने से व्यक्तिगत जीवन भी उच्च होगा, पवित्र होगा पारिवारिक जीवन भी पवित्र होगा और सामाजिक जीवन भी पवित्र होगा। इससे ये सिद्ध